ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية البتہ اگر لاؤ تم ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر نشانی بھی آپ ان کے پاس لے آئیں گے ما تبعو قبلہ تک یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے نا پتہ نہیں ان کو اس طرح بتا دیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ تھا کہ صرف بتانے سے نہیں ہو سکتا ہے کوئی معجزہ آ جائے کوئی نشانی آ جائے تو یہ سمجھ جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتن اندر اتنا درد رکھتے تھے انسانیت کا صرف امت اجابت کا نہیں رکھتے تھے امت دعوت کا بھی رکھتے تھے آپ کو پتہ نہیں ساری ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک امت اجابت یعنی جنہوں نے مان لیا اور ایک امت دعوت یعنی جنہوں نے نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا ان کو دعوت دی جاتی ہے ان کا بھی درد تھا اور چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے یہ مان جائے نا تو اب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی نشانی اگر آ جائے ہو سکتا ہے یہ مان لیں تو فرمایا نہیں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے آپ ان کے اوپر ہلکان نہ ہو کیونکہ یہ تو پہلے ہی اچھی طرح جانتے ہیں یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے یعنی ایمان پھر بھی نہیں یہ لائیں گے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ ہی یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے قبلے کی طرف آپ ڈائریکشن کریں وہ بھی آپ کا قبلہ نہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی نہیں تھی اس طرف اب خانہ کعبہ ہی ہمیشہ کے لیے آپ کا قبلہ بن چکا بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے تو اب یہ اجازت نہیں ہے کہ کہیں اور طرف آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آج بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اب آپ قبلہ چینج کر کے ہوتے تھے کہ ہمارا پہلا قبلہ تو وہی تھا نا کوئی بات نہیں یہ تو قبلہ جو ہے وہ ایک امت کا کی سمجھ لے آئیڈینٹیٹی ہے شناخت ہے آپ اپنی شناخت تو نہیں ختم کر دیں گے امت مسلمہ کی پہچان ہے تو آپ نہیں یہ کر سکتے وہ ماں باد ہوں بتابین قبلہ تباد اور ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک قبلے کے اوپر متفق نہیں ہے ایک آپس میں بھی ایک قبلہ نہیں فالو کرتے کیونکہ نصارہ جو تھے وہ بیت المقدس کا ایسٹرن سائیڈ جہاں پہ حضرت مریم اعتکاف کرتی تھی اس طرف اس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے اور یہودی مغربی سائیڈ میں نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے تو آپس میں بھی سپلٹ کیا ہوا یہ تو آپس میں بھی نہیں ایک ہے کہ ایک دوسرے کے قبلے کو صحیح سمجھیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اسی طرح کی ہم نے بات پہلے بھی پڑھی ہے پچھلے پارے میں بھی لیکن وہاں پہ تھا کہ آپ کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یہاں پہ کیا ہے آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کے باوجود کہ آپ کے پاس العلم آ گیا العلم سے مطلب کیا ہے وہ خاص علم ہوگا نا الف لام جب لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز معرفہ بن گئی خاص ہو گئی تو العلم آپ کے پاس آ جائے العلم سے مراد ہے وحی وحی کا علم آپ کے پاس آ گیا یعنی یہ قرآن جب آپ کے پاس آ گیا اس کے باوجود اگر آپ نے پھر بھی جیسے یہ چاہتے ہیں وہ تو چاہتے تھے آپ ادھر کو منہ کر لیں تو آپ نے ادھر کو کر لیا یا آپ نے ان کی بات مان کے کچھ اور ان کی بات میں ان کو دین کے معاملے میں ان کی کوئی بات مان لی کمپرومائز کر لیا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے اب یہ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کرنے والے نہیں تھے یہ الفاظ بہت سخت ہیں اتنی سخت بات اس لیے کی گئی کہ آپ کی امت سن لے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو تم لوگ بھی سن لو پھر کہ اگر تم نے کمپرومائز کیا ان کی خواہشات پہ چلے کیونکہ ان کے پاس اب دین تو ہے نہیں اب خواہشات کا دین ہے ان کا جیسے تروڑ مروڑ کے دین کو انہوں نے حال کچھ اور ہی بنا کے رکھ دیا اس کا حال بگاڑ دیا اور اصل میں اپنی خواہشات ہیں جس کو دین بنا دیا آپ نے اگر اب ان کے جیسے یہ کہتے ہیں جیسے یہ چاہتے ہیں جو ان کی چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات ہیں ان کے اوپر چلے اس سے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے روشنی آ گئی ہے ہدایت کا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے एक तरफ अल्लाह ताला की बात और एक तरफ उनकी बात, तो फिर तो आपका हाल क्या होगा कि आप जालिमों में से होंगे। ये हमें समझने की जरूरत है। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला अपने नबी को ये फरमा रहा है, उनके पास भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो तो हालांकि ये चाहते थे कि ये लोग ईमान ले आए ताकि ये आग से बच जाए, और उनके पास अगर कोई गुंजाइश नहीं है तो हमारे पास कैसे गुंजाइश निकलती है कि हम उनके रास्ते पे चलना शुरू हो जाएं जो मग़दूब अलैहिम है, और हमारे पास इल्म घरों में पड़ा हुआ है, कुरान हमारे पास है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं माननी और हमें कुछ और मानना है, चाहे यहूदियों का तरीका हो चाहे नसरानियों का तरीका हो। आज हर तरीके को हमने महबूब बनाया हुआ है और कुरान एक तरफ पढ़ा हुआ है, कुरान के तरीका तो जानना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर ना खुद को कहें कि हम तो हमसे ज्यादा तो पक्के अच्छे मुसलमान ही कोई नहीं, फिर तो जालिम हो, और जालिमों का ठिकाना कयामत के दिन क्या होगा सोच लें खुद। फिर तो इसकी गुंजाइश कहीं नहीं निकलती क्योंकि हम सबके पास कुरान आ चुका है। आप बताएं कि फिर इस कुरान के बावजूद जो मैंने आपको पहले कह रही थी कि कई हैं हम में से जिन्होंने इस कुरान का इल्म भी ले लिया, लेकिन फिर भी ख्वाहिशात ही हैं जो गालिब हैं, सीख भी लिया समझ भी लिया फिर भी फॉलो वही करते हैं जो दूसरों की ख्वाहिशात हैं, जिस पे वो चलाना चाहते हैं। और जुल्म तो कयामत के दिन अंधेरे बन जाएगा, अंधेरे होंगे, उन जालिमों को कोई पनाह नहीं मिलेगी। तो हम सोच लें कि फिर हमने अल इल्म लेना है या हमने लोगों की ख्वाहिशात पे चलना है। आज अगर हमारे पास क़िबले का मसला नहीं है, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हमें तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, हमारे लिए तो वो बड़ी बात नहीं क्योंकि हम तो हमेशा से उसी की तरफ थे, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चेंज लानी पड़ती है, फिर उसमें हम क्या करते। और हमें यहां से ये भी पता चल गया कि इसके बाद के कुरान आ चुका है, उसके बाद कोई इसको फॉलो ना करे, ठीक है, अगर कोई हिदायत का पैगाम ही ना होता, हमारे पास इल्म आया ही ना होता तो अलग बात थी कि शायद किसी के पास कोई एक्सक्यूज रह जाता कि हमें तो बताया होता तो हम करते ना फॉलो, हमें तो बताया ही नहीं गया था। लेकिन जब अल इल्म आ चुका, कुरान और हदीस आ चुके, हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी कोई चूज करता है किसी और का रास्ता, उनको फॉलो करने में अपनी बड़ाई समझता है और उसी के अंदर लेटेस्ट बात उसी को समझता है, उसी पे प्राउड होता है, मैं जितना उस रास्ते पे चलूंगा उतनी ही मेरी बड़ाई है और अच्छाई है। तो वो जालिमों में से है फिर, क्योंकि वही इलाही को छोड़ना कोई छोटी बात है, ये कोई मजाक है जो हमने मजाक बना लिया कि वही तो पड़ी रहे, वो तो बस रमजान के रमजान खोल के और दो चार दफा कुरान पढ़ लिया और हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उसके बाद कुछ अमल करने की जरूरत नहीं है। जबकि हमें ये पता चला कि अल इल्म जब आ जाएगा तो किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो पीछे बात एक मैं भूल गई, आयत नंबर 143 में, यहां पे ईमान जो नमाज को कहा गया है, तो नमाज तो अमल है, इसका मतलब ईमान जो है सिर्फ ये नहीं कि आपने कह दिया मेरे अंदर तो बड़ा ईमान है, मैं बड़ी ईमान वाली हूं, और अमल कुछ नहीं करते। तो ईमान जैसे ये इस चीज का सबूत है कि ईमान दिल की तस्दीक का भी नाम है, जुबान के इकरार का भी नाम है और अमल का भी नाम है, तीनों चीजें ईमान में आती हैं, और ये आयत इसका सबूत है। अगर नमाज में तो अमल करना पड़ रहा है ना, जुबानी कलामी तो नहीं बैठ के हम नमाज को बहुत अच्छा समझती हूँ दिल में और वो उसको कह दूं मेरे पास ईमान है। हम ये ना सोचे कि हम अपनी जिंदगी में जिस ढंग पे भी गुजार रहे हैं उसी पे गुजारते रहें, और कुरान एक तरफ हम साइड पे रखा हुआ है और बस इस तसल्ली से हैं कि हम तो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, नहीं ये ना हो कि हमारा शुमार जालिमों में हो जाए। अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाहुम, वो लोग जो किताब दिए गए, जिनको दी हमने किताब, बल्कि दिए गए नहीं, उतू नहीं है यहाँ पे, आतैनाहुम है, हमने दी किताब। उलमा कहते जो जगह पे जहां पे ऊतुल किताब आता है, जिनको दी गई किताब, और जहां पे आतैनाहुमुल किताब आता है, उसके अंदर वो इस तरह से फर्क करते हैं कि जो आतैनाहुम है ये वो लोग हैं जिन्होंने किताब पाई और फिर अमल भी किया, यानी उस किताब के मुताबिक फिर चले भी और माना उसको, सही माना फिर। और ऊतू जब मजहूल का सीगा आता है तो उन्होंने फिर रिजेक्ट ही किया। और यहां पर क्या है, देखिए यहां पे कहा गया वो जो जिनको हमने किताब दी, वो किताब को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह से पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यारिफूना हु की जमीर किस तरफ जा रही है, इसके अंदर ये भी कहा गया कि इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे ये भी हु की जमीर किबला भी कहा गया, वो किबले को पहचानते थे, उनको पता था कि इनका ये किबला है। और हु की जमीर कुरान भी है कि कुरान को ये जानते थे, अल इल्म को जानते थे कि ये हक है। तो तीनों बातें ली गई इसमें, क्योंकि आगे यारिफूना अबना हम, आप कहेंगे वो तो बेटे हैं तो फिर इसका मतलब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हुए हु की जमीर, नहीं असल में उनका ना मुहावरा होता था, वो जिस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते होते थे तो उसको कहते थे इसको तो मैं ऐसे पहचानता हूँ जैसे अपने बेटे को। तो जैसे इंसान हजारों लोगों में भी अपने बेटे को पहचान लेता है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होती कि ये पता नहीं मेरा बेटा है कि नहीं है, इसी तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानते थे, अव्वलीन बात ये है, वो किबले को भी जानते थे, वो कुरान को भी जानते थे। तो यहां तक इसलिए आते ही ना हम आया, लेकिन वह इन्ना फरीकन मिनहुम, लेकिन एक फरीक उनमें से, पहचानते तो सारे ही थे मगर एक फरीक इनमें से ऐसा था, लयक्तुमून अल हक वहुम यालम, वो हक को छुपाते थे जबकि वो जानते थे कि हक क्या है। उनको पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी, उनको पता था क्या ये किबले के भी डायरेक्शन का भी, के इनकी ये किबला होगा, उनको ये सारी बातें पता थी। तो ये समझ आ गई आपको कि तौरात और इंजील के मानने वालों में से जो गलत लोग होते थे उनके लिए उतुल किताब आया, और जो लोग इनमें बाद में ईमान ले आए तो उनके लिए ज्यादातर आते ही ना होगा आया। तो ये आपने समझ लिया कि उनमें से एक फरीक था, यानी उलमाए यहूद में से ही था कुछ, तो जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथी इस्लाम ले आए थे, लेकिन दूसरे जो थे वो जानबूझ के छुपाते थे। जब आप किसी चीज को पहचानते भी हों और फिर भी उसको छुपा रहे, इसका मतलब जानबूझ के कर रहे थे। अलहक्कु मिन रब्बिका, हक तो है ही वो जो तेरे रब की तरफ से, मैंने आपको बताया ना जब शुरू के अंदर कोई चीज आ जाती है उसमें हासर आ जाता है, हक है ही वो जो आपके रब की तरफ से, बाकी कोई दुनिया में कितना भी कहता रहे ये बात सही है ये ऐसे है, वो कितनी भी बातें करे वो हक नहीं हो जाता। और इसे ये भी ना सोचिएगा कि आप चूंकि सारी दुनिया ये कह रही है इसलिए यही हक हो गया, हक वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। इसलिए माशरे में जो चीज प्रिवेलिंग हो या लोग कोई बातें कर रहे हो जो एक कॉमन नोशन बन जाए, या साइंस कुछ कह रही है ऐसी बात, या कोई और शख्सियत है जो ऐसी बात कोई कह रही है, अगर वो अल्लाह ताला के कलाम से कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो वो चाहे किसी किस्म की भी बात हो, किसी किस्म का भी इल्म हो, किसी किस्म की भी फिलॉसफी हो, उससे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं और अपने दीन में डाउट करने की जरूरत नहीं। इमाम गजाली दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे ऐसा ईमान अता फरमा कि कोई मोजजा भी देख के मुतजलजल ना हो, यानी इतनी बड़ी कोई निशानी भी देख के ना मेरा ईमान ना अपनी जगह से हिले। तो हमारे क्यों ऐसा होता है कि साइंस की बातों को कभी लेकर बैठ जाते हैं, कभी कोई प्रोफेसर ऐसा मिल जाता है कि उसको बात से मुतासर हो जाते हैं, कभी किसी मजलिस में जाते हैं वहां पे दो लोगों ने कोई बात कर दी तो हम अब इतने डाउटफुल हो जाते हैं और हमारे दिल में खुद ही आने लगता है कि हाँ ये फिर ऐसे क्यों है, इस्लाम में हमारे दीन में तो ये चीज सही नहीं, और दिल में ना कुछ नेगेटिविटी आने लग जाती है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में कोई बातें सुन के फिर हम बहुत ही तब कुछ नाला से रहना लगते हैं कि कुछ हमारा दिल मुतमईन नहीं हो रहा होता। क्यों? जबकि अल हक में रब्बी का है, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हमें कहा गया आप शकूक को शुभात में ना पड़ना, शक करने वालों में से कभी ना हो जाना। छोटा सा फिकरा है लेकिन सारे शकूक को खत्म करने वाला है। हक बात वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, इसको मान जाए। जब आपने कलमा पढ़ लिया तो अब नहीं शक करना, क्योंकि जहां शक आ गया ना वहां पे देखें सारी चीजें ही खराब हो जाती, पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाती। मसलन किसी को अगर शक पड़ जाए तो पता नहीं ये मेरे वाकई ये मेरे माँ बाप हैं भी कि नहीं, आप खुद सोचिए कि उसके बाद क्या होगा। वो लोग शकूक ढालते थे उस सोसाइटी के अंदर, दीन में शकूक डालने की कोशिशें करते थे और आज भी लोग लगे हुए हैं। अलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक की एक डायरेक्शन है, वो उसकी तरफ मुंह फेरने वाला है। यानी हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने किबला मुकर्रर किया, वो उसकी तरफ उसको फॉलो करता है अपने किबले को। एक तो ये किबले की बात हो गई, वैसे भी जिंदगी में हर एक की एक डायरेक्शन है, किसी की डायरेक्शन तो अल्लाह ताला की तरफ है और किसी की डायरेक्शन ही रॉन्ग है, उसकी डायरेक्शन ही कुछ और है। कहते हैं ना बच्चों को अपनी डायरेक्शन सही करो, यानी सही संत में चलो आप, यानी आप ये ना हो कि आपने पढ़ाई करनी है और किसी और ही तरफ खेलों में लगे हुए, तो हम कहते हैं अपनी डायरेक्शन सही करो, अपना रुख सही करो। तो किबले की तो बात है ही, मगर जिंदगी की भी डायरेक्शंस होती हैं और वो डायरेक्शन डिटरमिन करती है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, जन्नत की तरफ को या जहन्नुम की तरफ। फस्तबिकुल खैरात, और नेकियों में आगे बढ़ो। अगर हम किबले की बात लेते हैं तो अब ये मतलब है कि यानी आप सिर्फ हर वक्त इस बहस में ना रहो कि कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, आप नेकी में आगे बढ़ो। फिर का मतलब क्या होगा खैरात का? नमाज, कि नमाज के लिए सबकत करो। बाज ने इसका मीनिंग यहां से खैरात का नमाज लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अफजल अमल का पूछा गया तो फरमाया अफजल तरीन अमल ये है कि नमाज को उसके वक्त में अदा किया जाए, यानी शुरू का जो टाइम है अव्वल वक्त है उसमें नमाज अदा की जाए। तो इसमें दौड़ लगाओ, नमाज के लिए आगे बढ़ो। और यहां अगर नमाज के अलावा खैरात से दूसरी सारी नेकियां भी मुराद ली जाएं तो मतलब है नेकियों में कंपीट करो, नेकियों में आगे बढ़ो। देखिए हमें नेकियों के कंपटीशन का इतना पता नहीं, क्योंकि नेकियों का कंपटीशन ज्यादातर होता ही नहीं, ज्यादातर क्या है दुनिया का कंपटीशन होता है। उसके पास ये गाड़ी, उसके पास ये घर, उसके पास इतना, वो इस जगह पहुंच गया, हमने क्या किया, इसमें कंपीट करते हैं। अल्लाह अकबर। जबकि यहां कहीं पे भी कुरान करीम में दुनियावी चीजों में कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है। सारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, दौड़ो किसकी तरफ? अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत और जन्नत की तरफ। यहां पर कंपीट करो, मुसाबकत करो, मुकाबला करो एक दूसरे के साथ, किसमें? नेकियों में। कहीं पे भी दुनियावी दौड़ में मुसाबकत का है ही नहीं है कॉन्सेप्ट, जबकि हमारी दौड़े और हमारे मुकाबले कपड़ों में, जेवर में, पैसे में, स्टेटस में इसमें होते हैं। अल्लाह अकबर। तो हर किस्म की नेकी में फरमाया आप आगे बढ़ो, नेकियों में मुकाबले करो, नेकियों में अपने से ऊपर की तरफ देखो, और दुनिया में, पैसे में, स्टेटस में अपने से नीचे की तरफ देखो। क्यों? उससे क्या होगा? तो जब आप अपने से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि हाय मैं पीछे रह गई और मुझे और तेज दौड़ना है। और जब दुनिया में हम ऊपर की तरफ देखने लगते ना, हमने उलट कर लिया। जब दुनिया में ऊपर की तरफ देखोगे ना, उनके पास तो इतना है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ हमारे पास तो है नहीं, हमारा घर तो ऐसे है, उनका देखो घर कैसा, उसने तो ये डिजाइनर का पहन लिया कपड़ा, और मेरे पास तो कोई पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, हालांकि सारी वार्डरोब भरी होती, कुछ है ही नहीं मेरे पास, हमारे पास क्या है। और बस हर वक्त यही रोना रोते रहते हैं, बस जी क्या करें, बस जी क्या करें, गुजारा ही नहीं होता। हालांकि अच्छा भला खा पी रहे हैं, सर पे छत है, सेहत तंदुरुस्ती है, फिर भी बस रोना ही नहीं खत्म होता, क्योंकि हमेशा हम ऊपर से कंपीट करते हैं ना, और फिर खुद को हलकान करते हैं कि हमने भी उस तक पहुंचना है। मुकाबले इन्हीं चीजों के होते हैं। और दीन के मामले में हमने उसमें भी उलट कर लिया कि हम मिनिमाइज कर लिया अपने आप को। मिनिमिस्टिक होता है कि क्या, जो जो यानी मिनिमम के ऊपर रहना चाहते हैं, हमेशा अपने से सोचते हैं अच्छा अगर मैं थोड़ी नमाजें पढ़ रही हूं, फजर पे नहीं उठती, तो देखो कई लोग ऐसे भी तो हैं वो तो पढ़ते ही नहीं है। अगर मैं इतना सा ये कर रही हूं ना, ये कि भी कुरान की बस थोड़ी सी पढ़ाई कर रही, हाँ तो कई लोग तो पढ़ते ही नहीं है। मैं देखो पढ़ तो रही हूं ना, यानी अपने आप को मुतमईन करते रहना कि मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इस पे ही काफी हूं। दीन के मामले में ये नहीं कहा गया अपने बराबर वाले को देखो, नीचे वाले को तो दूर की बात है, नीचे को तो देखना नहीं, बराबर को भी नहीं देखना, उनको भी देख के इंसान सेटिस्फाइड रहता है कि ठीक ही है, वो भी इतना ही करती है, मैं भी इतना ही कर रही हूं, हम सारे एक जितने ही हैं। ये भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा कभी। दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखो, तब आपको होगा कि मैंने भी आगे बढ़ना है, तब मोटिवेशन होगी, तब आपको ये होगा कि मैं पीछे रह गई इसमें, मुझे उसने ये भी ये भी ये भी कर लिया और मैंने क्या किया, मुझे और वक्त लगाना है, मुझे और काम करना है। तो नेकियों में, दीन में अपने से हमेशा ऊपर को देखे, अपने रोल मॉडल्स रखे। अगर इस दुनिया में नहीं मिलते तो सहाबा को रोल मॉडल बनाइए, नबी अलैहिस्सलाम की जात को बनाए, ऊपर की तरफ को देखे। उस मामले में हम फौरन कह देते हैं हम तो वैसे हो ही नहीं सकते, कहाँ वो और कहाँ हम, बेशक हम नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम उस डायरेक्शन में तो चल सकते हैं। हर एक ही एक डायरेक्शन है, तुम्हारी डायरेक्शन क्या है? अनामता अलैहिम की डायरेक्शन में चल रहे हो या किसी और की, मखदूब की डायरेक्शन में चल रहे हैं? तो अपनी डायरेक्शनों को चेक करने की जरूरत है, अपनी दौड़ों को चेक करें, किस तरफ दौड़ने लगती हैं, नेकियों में या किसी और तरफ, मुकाबलों में चेक करें किस चीज के मुकाबले करती हूं, और इसके लिए इंतजार ना करें कि कोई आगे हाथ पकड़ के ही चलाएगा तो हमने चलना है, खुद आगे बढ़े। जैसे रेस में है, मैंने आपको बताया मुसाबका क्या होता है, रेस, रेस में सब दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हर एक की क्या ख्वाहिश होती है कि वो जो आगे वाला है ना उससे भी ज्यादा मैं आगे चली जाऊं, उसके बराबर नहीं उससे आगे चली जाऊं, तभी मैं जीतूंगी। हर वक्त जहन में ये मुकाबला होना चाहिए, ये एक सोच होती है, पहले ये सोच बनानी है हमने कि मैंने इसमें मुकाबले करने, मैंने इसमें आगे बढ़ना है, मैंने इसमें जीतना है। अइनमा तकूनू याती बिकुमुल्लाहु जमिया, जहां कहीं भी तुम होगे ले आएगा तुमको अल्लाह ताला सब के सबको। कहाँ जाओगे? अगर आपने अपनी दौड़ें किसी और तरफ लगाई हुई है तो कितनी दूर चले जाओगे? अल्लाह ताला से तो भाग नहीं सकते, वो तो ले आएगा तुम्हें जहां कहीं भी होगे कयामत के दिन जमा करके सबको हाजिर कर लेगा। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये ना सोचना कि उससे कहीं भाग के जा सकते हो, उसकी कुदरत से बाहर हो, उसको थका सकते हो, ऐसा नहीं। वो हर चीज पर कादिर। तो नेकियों में दौड़ लगाओ, इसलिए कि एक दिन उसके आगे खड़े होना है। फिर रू इल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ भाग के आ जाओ। अमिन हाई सुखरा इतफली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम। देखिए बार बार एक ही बात आ रही है, क्यों? जहां कभी कहीं भी हो तुम अपनी रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लो। तो ये इसलिए आ रही है, उलमा ने इसकी बहुत सारी बातें कही हैं इस बारे में। एक वजह ये दी गई है कि देखें, अगर तो आप मस्जिद हराम में ही हैं, अंदर हैं उसके, तो एग्जैक्ट खाना काबा की तरफ आपने मुंह करना होगा। फिर नहीं आप इधर उधर कर सकते कि जी मेरी डायरेक्शन इधर उधर हो गई। दूसरा हुक्म यहाँ पे आया, फिर दूसरी दफा भी आया, तो यानी जो मक्का में है वो मस्जिद हराम की तरफ मुंह कर ले। फिर तीसरी दफा भी आया है, हैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, और यहाँ पे मोमिन हैसु खरजत फवल्ली वजह का, तुम जहां भी निकलो, तो अब दुनिया में आप कहीं पे भी हैं, किसी सरजमीन में, आप मक्का की तरफ मुंह भी कर लेते हैं, उस डायरेक्शन में भी कर लेते हैं, तो आप ओके हैं। ये एक मुफस्सरी ने बताई बात। दूसरी उन्होंने ये भी बताया कि देखें ये भी वजह हो सकती है कि एक हुक्म इसलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, आप बार बार आसमान की तरफ चेहरा फरमा रहे थे। दूसरा ये भी कि ये इस उम्मत का किबला है, तो इसलिए भी बताया गया। तीसरा ये कि यहूद नसारा के एतराजात को दूर करने के लिए दोबारा से बताया गया, और ये भी रीजन है इसकी बार बार तकरार करने का कि ये एक बड़ी चीज थी, और अब इसको तुम मामूली ना समझना कि कोई बात नहीं, कभी परवाह ही नहीं करे, नहीं दीजिए बस अल्लाह ताला तो हर तरफ ही है, कोई बात नहीं, किधर भी पढ़ लो। नहीं, पहले तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि किबले की डायरेक्शन फाइंड आउट करो और उसके अंदर उस तरफ ही पढ़ो। फिर नहीं मिलती या कोई गलती हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन इसको अहमियत दो। ये इसकी अहमियत को साबित करता है कि ये कितनी अहम बात है। और दूसरे भी ये कि कोई भी किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि वो ये सोचे कि कोई बात नहीं, कहीं को भी पढ़ ले। ये बार बार की तकरार बता रही है कि इसको कबूल करना तुम्हारे लिए कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अब यही है, इसकी ताकीद है। लेकिन जैसे ना बार बार बच्चे को कोई बात कहते हैं ना, बल्कि बच्चे तंग भी आ जाते हैं कि आप बार बार कहते हैं, क्यों? आप रीइंफोर्स करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि कहीं ये ना हो कि ये इस चीज को भूल जाए, इसको अहमियत ना दे। तो जहां पे भी तुम निकलोगे तो फेर लो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। जहां पे भी तुम निकलो का मतलब क्या, यानी अब आप घर से भी निकलेंगे तो मस्जिद हराम की तरफ मुंह कर लेंगे? नहीं। देखिए ना, यही बातें हैं, मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि आप समझें हदीस की अहमियत क्या है। अगर आपने हदीस को छोड़ दिया तो आप कहाँ से मीनिंग लेंगे कि कहाँ को मिले, फिर तो हर कोई अपना अपना ही मतलब करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये मतलब है कि नमाज के लिए निकलो। जब भी आप नमाज पढ़ने लगो, सिर्फ घर में ही नहीं, उस शहर में जहां पे भी आप चले जाओ, दुनिया में जहां पे आप चले जाओ, फिर अपना रुख किबले की तरफ कर दो। हाँ, सफर में ये हो सकता है कभी के आप जहाज में हैं या आप ऐसी जगह पे हैं कहीं के आप रुख ही नहीं कर सकते। मतलब जहाज में खास तौर पे आप कैसे रुख करेंगे, मसलन अब पीछे की तरफ है किबला, आप कैसे करेंगे? तो वहां पे फिर इतनी गुंजाइश मिलती है, आप स्टार्ट कर लें उस तरफ थोड़ा बहुत रुख करके, फिर उसके बाद बाकी जहाज भी देखें कभी मुड़ रहा है, कहीं जा रहा है, कैसे है, उसकी डायरेक्शन तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के लिए तो सवारी से उतर के किबले की डायरेक्शन लेकर उसके मुताबिक फिर नमाज पढ़ते थे, लेकिन जो नवाफिल होते थे, जिसको हम सुन्नतें भी कहते हैं, नफल भी कहते हैं, स्टार्ट उसी तरफ को करते थे जिधर किबला है, उस तरफ सवारी का मुंह कर लेते थे, लेकिन उसके बाद सवारी कहीं पे भी जाती थी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी रखते थे। वह इन्नहु लल हक मिन रब्बिक, और बेशक अलबत्ता ये हक है तेरे रब की तरफ से, ये बात सच है, ये बात हक है। और वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है कि जो तुम अमल करते हो। नहीं, तुम अगर इसको मामूली समझते हो या इस पे इतराज करते हो या तुम्हारे दिल के अंदर कोई बात है, तो ये अल्लाह ताला सब बातों को जानने वाला है। अमैन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरहू। यहाँ पर देखें, आप जहाँ से भी निकलोगे तो आप अपना चेहरा उस तरफ फेर लो, मस्जिद अल हराम की तरफ, और इज्तमाही तौर पे भी सारी लोगों के लिए भी कि सब भी जब जमात से भी नमाज पढ़े तो तब भी रुख उसी तरफ करें। तो अल्लाह ताला ने वापस रिस्टोर कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ने जो काबा तामीर किया था उसी तरफ। और देखिए, एक इससे ये भी अगर डायरेक्शन की उसमें ले ना, तो आप कहीं पे भी दुनिया में हैं, आपका रुख नहीं बदलना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस तरफ रुख करने का हुक्म दे दिया है ना, उसी तरफ रुख करें। नॉट ओनली फिजिकली, सिर्फ फिजिकली तो हमने करना ही है, वो तो सबको पता ही है, लेकिन वैसे भी जिंदगी में भी, ये नहीं कि जिधर जाए वैसे ही बन जाए, अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ रखें। तो यहाँ पर एक हुक्म आपने समझ लिया ना, आसपास वालों के लिए जो ये मस्जिद हराम के अंदर हैं, एक मक्का वालों के लिए और एक पूरी दुनिया वालों के लिए, सारे ही हुक्म आप देख लें। अब तकरार भी आपको बता रही है कितनी अहमियत है इसकी। ली अल्ला यकून लिन्ना से अलैकुम हुज्जतुन, ताकि हो जाए, इससे क्या होगा, एक हुज्जत भी हो जाएगी लोगों के ऊपर तुम्हारी तरफ से। हुज्जत क्या होती है, दलील एक, यानी आप देखें कि जो अहले किताब थे उनकी किताब में चूंकि लिखा हुआ था कि इनका किबला मक्का है, तो इसलिए हुज्जत हो गई लोगों के लिए, तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना रह जाए कि अगर ये किबला ना चेंज होता तो उन्होंने कहना था लो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है ये बात, के आखिरी उम्मत का तो किबला ही बैतुल्ला होगा और तुमने तो ये कह दिया कि तुम बैतुल मकदस की तरफ नमाज पढ़ते हो, तो छोड़ना तो उन्होंने तब भी नहीं था। तो इस अल्लाह ताला ने चेंज कर दी कि तुम्हारे खिलाफ ये कुछ बोल ना सके, फिर कोई बात ना कर सके। लेकिन क्या मतलब है, इसके बाद बोलेंगे नहीं, फिर भी बोलेंगे इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, मगर जो जालिम है इनमें से वो फिर भी उन्होंने बाज नहीं आना। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने तो हुज्जत तमाम कर दी ना, अल्लाह ताला ने तो सारी बातें बयान फरमा दी, दलील भी दे दी, लेकिन फिर भी लोग कुछ जिनके अंदर खबासत होती है वो फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी बातें करते रहेंगे। इसलिए अगर इंसान लोगों को राजी करने में चल पड़ा ना, तो कभी लोगों को राजी नहीं कर सकता। इनमें से जो जालिम है वो कभी चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे देखिए ना, कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया। अब लोग इससे समझते हैं कि पता नहीं शायद कभी कोई कुरान बनाएगा ही नहीं अपनी तरफ से, बनाएंगे लोग, और अल्लाह ताला ने चैलेंज भी दे दिया इसके जैसा कुरान ला सकते हो ले आओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी कोई कुरान ऐसा कोई लिखेगा ही नहीं। लोगों ने लिखना भी है, लोगों ने कोशिशें करनी भी हैं, लोगों ने मुकाबलेबाजियां करनी भी हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे, ये मतलब है। आप किसी ने निकाल के डाल दिया, आए दिन आता रहता है जी, एक वेबसाइट है उसके ऊपर ये देखो इसे बच के रहो, ये कुरान नहीं है। मैं कहती हूँ कहने की जरूरत क्या होनी चाहिए, क्या एक मुसलमान को खुद नहीं पता होना चाहिए कि कुरान क्या है? अगर उसने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा ना कि कुरान क्या है, वो कभी भी नहीं उनकी बातों में आएगा, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। इसलिए हमें बार बार लोगों को भेजने पड़ते मैसेज के इस वेबसाइट पे ना चले जाना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यहूदियों ने कुरान बना के रखा है। तो वो तो कोशिशें करते रहेंगे लेकिन कभी कामयाब नहीं होगी। तो क्या हुआ उस कुरान का, उसको कहते ही है ना कुरान, वो अपनी जुबान से कुछ भी कहते रहे, उससे वो कुरान तो नहीं बन जाएगा। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, एक्सक्यूजेस तो खत्म कर दी, लेकिन फिर भी जालिम लोग होंगे जो कुछ बात करते रहेंगे। फला तख्शौहुम वख्शौनी, अब क्या होता है इंसान ना फिर डरना शुरू जाता है, अच्छा फिर क्या होगा, अभी तुम ये तो मेरी बातें करेंगे और ये तो बड़े पावरफुल लोग हैं और ऐसे हैं। तो आपने पहली बात ये कि डरना नहीं है, डरना तो सिर्फ अल्लाह ताला से, इनसे नहीं तुमने डरना। यही बात यहां पे बता दी गई है कि जब दिल में डाउट्स आए, जब दिल में परेशानी आ जाए कि अब क्या होगा, ये कुछ कहेंगे, तो याद रखो, अल्लाह से डरो, लोगों का डरना अपने दिल में रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक लोगों में एक धोखे का दौर आएगा, उसमें सच्चे को झूठा समझाएगा, जो झूठे को सच्चा समझा जाएगा, दयानतदार को बददयानत कहा जाएगा, बददयानत को दयानतदार कहा जाएगा। इतना धोखा होगा, तो जो सच्चा है ना, वो तैयार रहे इस चीज को फेस करने के लिए कि लोगों में से होंगे जो लोग ऐसे करेंगे। अब लेकिन काम तो अपना करना है, लोगों की बातों की वजह से डर के नहीं हमने बैठ जाना कि फिर बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ ताकि ये खुश रहे। नहीं, करना वही है जो अल्लाह ताला का हुक्म है। कभी भी ऐसा कोई मरहला आ जाए, कितना ही बड़ा दुश्मन हो, डरो ना उससे। हजरत इब्ने अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे बैठे हुए थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 10 बातें बयान फरमाई थी, छोटे बच्चे थे वो। तो एक बात उसके अंदर ये कि सारी दुनिया भी तुम्हें कोई फायदा देना चाहे तो ये यकीन रखो कि वो तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और सारी दुनिया मिल के भी तुम्हें कोई नुकसान देने पे तुल जाए वो नहीं दे सकते नुकसान जब तक अल्लाह ना चाहे। तो वो कितना एक बच्चे की भी जहन में ऐसी बातें अगर छोटे होते से ये बात बार बार कह कह के उसके जहन में बिठाई जाए तो कितना स्ट्रांग उसका ईमान। तो मुश्किल तरीन हालात में भी डरना किसी और से नहीं है, अल्लाह ताला से ही डरना है। वलयतिम्मा नियामती अलैकुम वला अल्लकुम तहतदून, ये तो अल्लाह ताला ने इसलिए किया है तुम्हारे ऊपर अपनी नियमत को तमाम कर दे, ये भी यानी अल्लाह ताला का इनाम है तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला की तरफ से एक नियमत है तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला अपनी नियमत तुम्हारे ऊपर मुकम्मल करना चाहता है और तुम्हारे लिए हिदायत का एक मरकज एक बनाना चाहता है तुम्हारे लिए, तुम्हें ताकि तुम हिदायत पा जाओ। ये देखें कैसे हिदायत है, ये सीधा रास्ता है इब्राहिम हनीफ जो थे उनका मरकज, उनका पैगाम तौहीद था, उसकी याद दिलाता है ये। तो किबले का बदलना चाहे हो चाहे कोई भी अल्लाह ताला का हुक्म हो, उसको मानते वक्त लोगों का डर दिल से निकाल दे, यहीं पे हमारा टेस्ट हो जाता है। जो ही मैंने आपको बात बताई ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम अजनबी था, अजनबी हो जाएगा, तो खुशखबरी हो अजनबियों के लिए। लिहाजा अल्लाह ताला के किसी हुक्म को मानते हुए ना शर्माए, ना परेशान हो, ना डरे। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, जैसे कि भेजा हमने तुम में एक रसूल। जैसे कि यानी क्या, ये इसी तरह एक नेमत है, जैसे ये किबले की चेंज भी एक नेमत है तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक मुसलमानों को एक आइडेंटिटी दे दी, उनका अलग एक मरकज दे दिया, और जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी, उसी तरह है एक और नेमत भी अल्लाह ताला ने आपको दी इस उम्मत को। फीकुम, तुम में एक रसूल हमने भेजे जो तुम में से हैं, और यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, जो तुम्हारे ऊपर कुरान की हमारी आयात पढ़ते हैं और व युज़क्कीकुम और पाक करते हैं तुमको, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और वो तुम्हें वो बताते हैं जो तुम्हें नहीं पता था। अब ये आप पहले पढ़ चुके हैं या नहीं, रिसेंटली आपने पढ़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी, रब्बना रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इनके अंदर मबऊस फरमा एक रसूल, तो उसी दुआ का समझ लें एक रेप्लिका यहाँ पर है, सिर्फ एक आध लफ्ज के आगे पीछे होने के अलावा सेम वही चीज़ है, वो दुआ की फॉर्म में था और यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने अता कर दिया एक रसूल, उन्होंने दुआ मांगी थी और हजारों सालों के बाद वो दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने एक रसूल अब भेजा है जो तुम्हारे ऊपर किताब की आयात की तिलावत करता है, तुम्हारा तस्किया करता है। वहां पे तस्किया जो था ज़कीहिम ये एंड में था, यहाँ पे शुरू में, जब आप दुआ कर रहे हैं तो वो बाद में था, लेकिन जब अल्लाह ताला अता फरमा रहा है तो फरमा रहा है इस रसूल का ये काम है कि तस्किया करे, यानी लोगों को पहले प्रिपेयर किया गया तस्किया करके कुरान के लिए तैयार करना, वो बाद में आया है, उनको किताब की और हिकमत की तालीम दे, उनके ऊपर आयात पढ़ता है और साथ साथ तज़किया करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़राइज़ में शामिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत करने वाले थे, ये अपने सहाबा के, पहले तो सहाबा हैं और उसके बाद सबकी तरबियत हो गई, जब आज तक हदीस हमारे तक पहुंच गई तो सबका ही तज़किया है ना हदीस के जरिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें जो के सहाबा में कहीं पे भी कोई नजर आती थी, उन सारी चीजों को निकाला और उनके अंदर नेकियों के बीज बोए। मैंने आपको तज़किया का सारा अमल एक बागबान से तशबीह दे के बताया था कि उस तरह से। तो तज़किया का माना एक और भी है, नीयतें साफ करना, यानी किताब की तालीम से पहले, हिकमत को जानने से पहले, हिकमत से मतलब क्या है यहाँ पे हदीस, जानने से पहले जरूरी है कि तज़किया किया जाए, नीयतों को साफ कर लिया जाए, क्योंकि अगर नीयत में इखलास होगा तो तभी ये चीजें फायदा दे देंगी। अगर नीयत में इखलास नहीं है ना, तो फिर कुरान पढ़ के भी, हदीस को समझ के भी कुछ नहीं हासिल होगा। फिर जैसे मिर्जा कादियानी, वो भी तो कितना कुरान पढ़ना और हदीस पढ़ना और बड़ा इबादत गुजार था, और उसके बाद क्या बना, उसने अपने आप को ही कह दिया मैं नबी। तो इसलिए तज़किये को पहले लाया गया, तज़किया पहले करो फिर कुरान और हदीस की तरफ आओ, अपनी नीयतों को खालिस करो। युआलिमुल वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और कितनी सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते और आपके नबी आपको आके बताते हैं तो आपको उनका पता चलता है। तो ये भी कि यानी जो दीन है वो वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दिया। फदकुरूनी अदकुर को, फिर तुम मुझे याद करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी। देखिए उन्होंने दो दुआएं मांगी थी, एक तो या अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, या अल्लाह लोगों के दिल मायल कर दे इस घर की तरफ, तो अल्लाह ताला ने उस घर को किबला बना दिया, अब सर रहती दुनिया तक इस उम्मत के लाखों करोड़ों लोग हर साल कितनी तादाद होती है हज और उम्रे करने वालों की, सारा साल भरा रहता है, करोड़ों लोग करते हैं, कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि वो जगह खाली हो। फिर आप देखें लोगों के दिल अल्लाह ताला ने इस तरह मायल कर दिए ना कि अब उस घर को आबाद कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की थी इब्राहिम अलैहि सलाम ने कि अल्लाह ताला ऐसा एक रसूल भेज दे, वो दुआ भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। अब तुम याद करो मुझे, अफकोर को मैं तुम्हें याद करूंगा, जब नेमत मिल जाए तो उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, और जब इंसान अल्लाह ताला को याद करता है तो जिस महफिल में उसको याद करेगा अल्लाह ताला उससे बढ़ के बेहतर मजलिस में उसको याद करेगा। अगर अकेले में याद करेगा अल्लाह ताला अकेले में उसको याद करेगा, अगर लोगों में याद करेगा तो अल्लाह ताला उसको फरिश्तों की मजलिस में याद फरमाएगा। कितनी बड़ी ऑनर की बात है कि किसी का जिक्र आसमानों में होने लगे, फरिश्तों के सामने होने लगे, और अल्लाह ताला खुद उसका जिक्र करने लगे। वशकुरू ली वला तकफुरून, और शुक्र अदा करो मेरा और कुफर ना करो, ना शुक्री ना करो, चाहे वो किबले का हुक्म आया वो भी एक नेमत है उसके ऊपर भी शुक्र अदा करो, चाहे और कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म, शुक्र अदा करो। ये नहीं कि मजबूरी में मारे बांधे हाय क्यों ऐसे हो गया और क्या, शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ताला के हर हुक्म को इंसान इस तरह से लेके उसको इम्पोर्टेंस दे, उसको कैजुअल ना ले, कैजुअल लेना भी ना शुक्री है। वो आप इंसान का क्या फर्क पड़ता है, इसको छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, इसको करने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लापरवाही वाला रवैया नहीं होना चाहिए। जिस चीज को इंसान नेमत समझिएगा उसको, उससे कभी लापरवाही नहीं करता, उसका शुक्र अदा करता है। तो ये दीन भी नेमत है, ये नबी भी नेमत है। और ये कुरान भी नेमत है। इसी वजह से छोटी छोटी बातों के ऊपर इसे मुंह मोड़ लेना, इसे मुंह फेर लेना, ये तो इसकी नाशुक्री होगी। तो नाशुक्री नहीं करनी। अल्लाह ताला का ये कलाम है, इसको पढ़ते हुए, इसको समझते हुए दिल में शुक्र के हमेशा जज्बात रखें। और ये ना सोचे हाय मुश्किल, हाय ये तो टेस्ट मुश्किल, हाय याद करना मुश्किल, हाय अल्लाह इसको इतना टाइम देना पड़ रहा है। नहीं, सोचे उस अजर को, उन नेमतों को, उस अल्लाह ताला की खुशनुदी को जो आप इसके जरिए पाते हैं। एक तरफ वो और एक तरफ हमारा ये थोड़ा सा टाइम देना, क्या मुश्किल है फिर? हमने इतनी सा काम किया और अल्लाह ताला के हाँ इतनी बड़ी कदरदानी होती है, दुनिया और आखरत की कामयाबी का जरिया है ये, तो कभी तोल के देखें कि मेरी बातें इतनी वर्थ हैं कि इन मुश्किलात जो छोटी छोटी हैं, आए बड़ा मुश्किल, आए बड़ा मुश्किल, आए ये हो गया, इतनी इतनी चीजों को इशू बना लेते, क्या ये इतनी वर्थ हैं कि मैं इनकी वजह से कुराने पाक से दूर हो जाऊं? जो हुआ खैर मिम्मा यजमाउन है, हर उस चीज से बेहतर जो जो लोग जमा करते। तो इसके ऊपर रोया ना करें, हाय ऐसे, हाय अल्लाह करना पड़ गया, हाय टेस्ट देना पड़ गया, हाय याद करना पड़ गया, हाय मुझसे नहीं होता और मुझसे नहीं, नहीं, हमेशा शुक्र के जज्बात रखें। और जब भी मुश्किल हो लगे तो उस अजर का सोचा करें जो बेशबहा अजर मिलने वाला है। क्योंकि जिक्र, अल्लाह ताला ने इस कलाम को भी अज़-ज़िक्र फरमाया है, ये अल्लाह ताला का कुरान अज़-ज़िक्र है। और अल्लाह ताला की किताब से बढ़ के उसका जिक्र कहाँ से मिल सकता है, उसकी याद कहाँ से आ सकती है? लिहाजा जिसको नेमतें मिली हैं, ये तमाम नेमतें हैं, उम्मते वसत में तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, तुम्हारे लिए किबला रख लिया, तुम्हारे लिए ये रसूल भेजे जो तुम्हें ये चार काम तुम्हारे लिए करते हैं, इसकी तफसीर हम देख चुके। तो इसके बाद तुम्हें शुक्रगुजारी के जज्बात रखने चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस कुरान के ऊपर हमेशा शुक्रगुजार रखे। जिस चीज की शुक्रगुजारी ज्यादा होती है उसी को अल्लाह ताला ज्यादा बढ़ाता है। अल्लाह ताला हमसे ये छोटी सी कोशिश है कबूल फरमा दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون